आज हमारे बीच में सादा जीवन ऊंच विचारों को सार्थक करने वाले, गंभीर जैसे बोल वैसे कर्म से दर्शन कराने वाले ईमानदार योगेश्वर बाबा के प्रखर योगी हमारे परम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का हम अभिवादन करते हैं और उनको नमन करते हैं। आदरणीय भाई जी की अद्भुत विशेषता है कि वो योग के प्रयोग बहुत अच्छे से कराते रहते हैं। अपनी युवा अवस्था में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट जीतकर बाबा के यज्ञ में सेवा के लिए आप आ गए। विशेष हमारी दादी और दीदी ने तीसरे नेत्र से आपको परखा। आपकी लगन और तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर टोली डिपार्टमेंट की आपको सेवा मिली। आदि से लेकर आज तक दादियों के वफादार राइट हैंड कुमार अभी भी बाबा के सभी स्थानों का टोली डिपार्टमेंट के आप निमित्त हैं। बहुत निमित्त भाव से सारी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं, क्योंकि टोली मधुबन आए और टोली ना मिले चलेगा, या दीदी मधुबन होके जाए और वहां टोली ना दे तो चलता है? नहीं चलता ना, भले इतनी इतनी सी मिले। वो सब तैयार भाई जी के द्वारा ही आपको ही श्रेय जाता है। योग के प्रयोग, योग का तीव्र पुरुषार्थ की लगन, योग का चार्ट बढ़ाने की लगन, इसने माला में बहुत नंबर आगे आपका ला दिया है। शुरू से ही सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे और आपको विशेष अव्यक्त बाप दादा की पालना भी मिली है। आप यूथ विंग के माउंट आबू कोऑर्डिनेटर हैं और आपने विश्व के पांचों ही महाद्वीपों में मैं समझू कि 90 से भी अधिक देशों में ईश्वरीय संदेश तथा राज्यों की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभ पहुंचाया है। भाई जी के लिए चार पंक्ति कहूंगी जो आज हमारे बीच क्लियर करेंगे। यूं ही हर कदम मत लड़खड़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ और अपने आप से संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? उसे एक्सपीरियंस का नाम देकर और दूसरों को बताते जाते हैं, जबकि आपको पता है भूमि में गया अंदर बीज ही अंकुरित होता है। जो भूमि के ऊपर डाल दिया जाएगा वो बीज कभी अंकुरित नहीं होता। और जहां हम श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं उसका शेयरिंग हम कहीं भी नहीं करते। इसलिए धीमे धीमे क्या होता है, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। तो अभी आज भाई जी हमारे बीच रखेंगे जमा का खाता बढ़ाने की विधि। कैसे हम जमा का खाता बढ़ाएं? तो एक हाथ का उठाकर भाई जी का पुनः स्वागत कि हम बहुत अच्छे से आज ये विधि सीखेंगे कि हम जमा का खाता कैसे बढ़ाएं। आदरणीय भाई जी,
ओम शांति। जमा का खाता बढ़ाने की विधि संगम युग में खजानों के सागर भगवान ने हम सभी बच्चों को बहुत खजाने दिए हैं। वर्षे के रूप में तो जितना जितना हम इन खजानों को सफल करते हैं प्रयोग में लाते हैं उतना ये खजाने बढ़ते जाते हैं। और जो संगम युग में खजानों से स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं वो सारे कल्प में स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करते हैं। इसलिए जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं उन खजानों को सफल करते चलें, परिणाम स्वरूप उनका खाता बढ़ता जाएगा और स्वयं को हम संपन्न अनुभव करते जाएंगे। बाबा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं, उसमें से पहला खजाना है समय का खजाना। समय का खजाना ये बहुत अमूल्य खजाना है, इसको हमें सफल करते जाना है, क्योंकि वरदाता बाप ने ड्रामानुसार संगम युग के समय को वरदान दिया है। जो भी जितना भी भाग्यशाली बनना चाहता है बना सकता है। संगम युग छोटा सा युग है लेकिन जितना छोटा सा उतना ये महान युग है। इसलिए समय को सफल करना सीखें। समय का खजाना अन्य खजाने को पाने का आधार है। इसलिए अगर हम व्यर्थ बातें करते हैं पर चिंतन करते हैं मन में अशुभ भावना रखते हैं तो ये समय का खजाना नष्ट होता जाता है। बजाय इसके हम समर्थ सोचें और सर्व के प्रति शुभ भावनाएं अपने दिल में रखें और सबका भला सोचते रहें और सबको आगे बढ़ाने के लिए मदद करते रहें तो ये समय का खजाना सफल होता जाएगा। बाबा ने कहा था जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं उस समय के खजाने को साधारण रीति से बिताते हैं और जो दिव्य बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं वो समय के खजाने को एक एक पल को सफल करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं समय को सफल करना भी बड़ी शक्ति है। दूसरा खजाना है संकल्पों का खजाना। ये भी खजाना बहुत विशेष है और श्रेष्ठ खजाना है। कहते हैं जो अच्छा खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए हमें भी आत्मा को अच्छा भोजन खिलाना है। श्रेष्ठ संकल्प रूपी शक्तिशाली संकल्प रूपी भोजन आत्मा को खिलाते जाना है और स्वचिंतन सकारात्मक चिंतन और परमात्म चिंतन में रहकर संकल्पों के खजाने को सफल करना सीखें। इसलिए हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं तो हमारा फर्ज है जो भी आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं उन पत्तों को, आत्माओं को शक्तिशाली संकल्प रूपी भोजन खिलाते रहें, ये हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए ताली बजाओ जरा अच्छी तरह से। संकल्प, इसमें कल्प शब्द अंतर्निहित है। संकल्प, जैसे हमारे संकल्प होते हैं ऐसे इस कल्प की परिस्थिति होती है। सतयुग में हमारे मन में हमेशा सतोपदान संकल्प चलते थे, तो ये सारा कल्प, ये सारा संसार सतोपदान था। जैसे हमारे संकल्पों में गिरावट आती गई, ऐसे इस संसार में भी गिरावट आती गई। इसलिए हमारे मन में हमेशा शक्तिशाली संकल्प ही हमें क्रिएट करते जाना है। इसलिए कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। तीसरा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के सागर बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया, ज्ञान का धन दिया। तो जब भी हम आपस में मिलते हैं तो ज्ञान की चर्चा करते रहें। और इस संसार में जो बड़े लोग होते हैं वो सारे दिन भर में दो तीन बार स्नान करते हैं। हम भी बाबा के बच्चे, बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, हमें भी दो तीन बार सारे दिन भर में ज्ञान स्नान करते रहना है। कहते हैं पढ़ना, समझना और धारण करना, ये तीन स्टेप्स ज्ञान के संबंध में होती हैं, जिसको फॉलो करने से मम्मा सबसे आगे चली गई। तो जब भी हम आपस में मिलते हैं तो चर्चा करें बाबा की मुरली में आज के क्या लहर थी, बाबा की मुरली में क्या विशेष पॉइंट था। तो ऐसी चर्चा करते रहें और ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान धन हमारा बढ़ता जाता है। हमारे सामने मम्मा का उदाहरण है। कृष्ण जब बांसुरी बजाता था, बांसुरी बाजू में रखते थे, तो राधा उसको चुरा लेती थी, छिपा लेती थी। तो ये संगम युग का गायन है। शिव बाबा कृष्ण की आत्मा के द्वारा जो मुरली चलाते हैं वो मम्मा छिपा लेती थी, अर्थात उस पर मनन चिंतन करती थी और स्वयं ज्ञान रत्नों से भरपूर अनुभव करती थी, सावकार अनुभव करती थी और अनेकों को सावकार बनाती रही। इसलिए मम्मा के बारे में कहते हैं मम्मा ने यज्ञ में एक कौड़ी नहीं लाई, लेकिन सारा संसार उनके द्वारा धन मांगता है, लक्ष्मी का पाठ उनको मिला हुआ है। तो संगम युग में धन से जो भरपूर होते हैं सारे कल्प में वो भी स्थूल धन से भरपूर रहते हैं। इसलिए ज्ञान धन को हमने खूब बांटना है। कई समझते हैं मेरे पास जितनी डायरिया हैं, जितना ज्ञान का स्टॉक है, सारा ही अगर मैं समझा दूं, बता दूं, लोगों को बांट दूं, तो मैं खाली हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर वाला देखता है ज्ञान का सागर, ये बच्चा, ये बच्ची, मैंने दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में धारण कर रहा है और अनेकों को बांट रहा है। तो ऊपर बैठकर वो ज्ञान धन देता रहता है, नई नई टचिंग, नई नई प्रेरणाएं, नए नए रतन देता रहता है, कभी वो स्वयं को व्यक्ति खाली महसूस नहीं करता है। इसलिए हमें खूब ज्ञान का धन बांटते जाना है। चौथा खजाना है दिव्य बुद्धि का खजाना। भक्ति मार्ग में भगवान को यही मांगते थे, मुझे दिव्य बुद्धि दो। भगवान ने संगम युग में हमें दिव्य बुद्धि दी, तो दिव्य बुद्धि को हमें दिव्य कर्मों में, ईश्वरीय कर्मों में लगाना है। उससे हमारी बुद्धि और तीक्ष्ण बनती है, सालिम बनती है, द्वरंदेशी बनती है, हंस बुद्धि बनती है, और जिससे आत्मा की प्रोग्रेस और होती जाती है। हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी अपनी बुद्धि में हमेशा विशालता रखती थी, सारे विश्व को सामने रखकर प्लान करती थी, और इसीलिए दादी विश्व की लीडर बन चुकी थी। तो ऐसे हमने दादियों से भी सीखना है, अपने बाबा ने जो हमें दिव्य बुद्धि दी है उसकी दिव्यता को और बढ़ाते जाएं और ईश्वरीय कार्य में उसका और प्रयोग करते रहें। पांचवा खजाना है खुशी का खजाना। बाबा ने हमें बेहद के खजाने दिए हैं, बेहद की प्राप्तियों के द्वारा हमें बेहद की खुशी अनुभव होती है। तो जो धनवान लोग होते हैं उनके चेहरे पर धन का नशा हमेशा रहता है। हम बाबा के बच्चे भी बहुत धनवान हैं, हमारे पास ज्ञान का धन बहुत अच्छी तरह से है और सर्व प्राप्तियों का धन है, इसलिए हमें भी धन के नशे में रहना है और चेहरे पर हमेशा खुशी झलकती रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। जैसे बाल्टी में पानी डालते हैं तो पानी भरते ही वो बाल्टी से पानी नीचे गिरने लगता है, ऐसे हमारे चेहरे पर भरपूर खुशी होगी तो वो खुशी झलकती रहेगी, छलकती रहेगी, और अनेक आत्माओं को हमारे चेहरे के द्वारा खुशी का दान मिलता जाएगा। इसलिए हमें बहुत खुशी बांटते जाना है। हम हीरो एक्टर हैं, इस बेहद के ड्रामा में हीरो एक्टर हैं। बाबा ने हमें हीरो एक्टर का रोल दिया है, सारे हीरो एक्टर को देखते हैं, इसलिए हमेशा हमें विश्व के स्टेज पर समझना है और चेहरे पर खुशी की झलक हमेशा अनुभव करना है। तो लोग हमारी खुशी को देखकर कहते हैं, क्या बात क्या है, आप इतने खुशनुमा कैसे दिखाई देते हो, मोटे ताजे हो गए हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। भाई हम उनको कहते हैं, हम सभी चक्रों से फ्री रहते हैं, जिस चक्की का आटा आप खाते उसी चक्की का हम भी खाते हैं, लेकिन सभी चक्रों से फ्री रहते हैं, एक ही सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, इसलिए सदा खुशी में रहते हैं और खुशियां बांटते रहते हैं और खुशी में सदा झूमते रहते हैं। संगम युग है, मौजों का युग। इस मौजों के युग में हमें खुशियां बांटते जाना है और सदा खुशी में झूमते रहना है, क्योंकि यही संस्कार हमारे साथ में सारे कल्प में चलता है। अभी खुशी से भरपूर रहेंगे तो सारे कल्प में हमारे साथ वो खुशी का संस्कार चलता रहेगा। छठवां खजाना है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। भक्ति मार्ग में कर्मों की खेती का गायन करते हैं तो बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है। कहते हैं जैसे कर्म करे मन मेरे वैसे ही बैल बनेंगे तेरे। तो हमें सदा श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने जाना है और उनके साथ अपनी तुलना करना है। क्या मेरे स्थूल और सूक्ष्म कर्म इनके जैसे महान हैं, इनके जैसे श्रेष्ठ हैं? ऐसा हमें उनके साथ स्वयं को कंपेयर करना है तो धीरे धीरे कर्मों में श्रेष्ठता आती जाएगी। कमल आसनधारी बनकर कर्म करते रहने से कर्मों में दिव्यता आती रहेगी और इससे दिव्य कर्म अनेक आत्माओं को प्रेरित करते रहेंगे और वो भी श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे और उनके दिल की दुआएं भी हमें मिलती जाएगी, जिससे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता, खजाना हमारे साथ श्रेष्ठ संस्कार के रूप में चलता है। इसलिए संगम योग में हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। और सातवां खजाना है दिव्य गुणों का खजाना। गुणों का सागर बाबा हमें मिला है, वो हमारा साजन भी है। उस सलोने साजन ने हम सभी आत्मा रूपी सजनियों को दिव्य गुणों की आभूषणों की ज्वेलरी दी है। तो ज्वेलरी को, उन आभूषणों को हमें केवल बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है, हमें उन आभूषणों को चेहरे पर जीवन में पहनना है, दिव्य गुणों को धारण करना है। मैं 1976 में मधुबन में सेवाधारी के रूप में आया था पांडव भवन में, तो हम 60 सेवाधारी बाप दादा से मिल रहे थे। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि देखो मधुबन में आप सेवा के लिए आए हो, समय बहुत कम है, इसलिए एक ही साथ ट्रिपल सेवा करना सीखो। भी हम सोच रहे थे ट्रिपल सेवा मधुबन में कौन से करेंगे, एक तो कर्मणा सेवा करते हैं, दूसरी है मनसा सेवा करना, वाइब्रेशन शुद्ध फैलाना, और तीसरी सेवा बाबा ने कहा दिव्य गुणों से सजे हुए चेहरे के द्वारा दिव्य गुणों का दान देने की सेवा हमें करते जाना है। क्योंकि मधुबन में सभी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों की सेवा हम कैसे कर सकेंगे, दिव्य गुणों का दान करते हुए सेवा कर सकते हैं। इसलिए चेहरा हरा भरा हो, उस पर आध्यात्मिकता की हरियाली हो, दिव्य गुणों की संपन्नता हो। जैसे लोग घर से बाहर निकलते हैं, मेकअप चेहरे की करते हैं, आईने में देखते हैं, ऐसे हम भी बाबा के बच्चों को आत्मा की मेकअप करना है और दिव्य गुणों के आभूषणों से आत्मा को सजा कर ही सेवा के क्षेत्र में जाना है। मेकअप के बिना हमें सेवा पर नहीं जाना है। अभी इसके बाद नौवां खजाना है शक्तियों का खजाना, शक्तियों का सागर बाबा हमें मिला है। कल मुरली में भी बाबा ने कहा है आपको अनेक आत्माओं को शक्ति का दान देना होगा, हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए। और प्राय अगर देखा जाए हम सवेरे शाम अमृत वेले और नमाज शाम के योगाभ्यास से जो भी शक्तियां प्राप्त करते हैं वो सारे दिन भर में शक्तियां हमारी यूज होती जाती हैं। हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं स्वयं के लिए, सेवा के लिए, कारोबार के लिए, उन संकल्पों के द्वारा वो शक्तियां यूज होती हैं। हमारे पास जमा का बैलेंस नहीं रहता है, इसलिए बाबा ने इशारा दिया है अभी वर्तमान समय के अनुसार शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना जरूरी है। उससे क्या होगा, अथाह शक्तियां हम स्वयं के पास जमा करते जाएंगे और थोड़ी शक्तियां यूज करेंगे तो हमारे पास शक्तियों का बचत का खाता बढ़ता जाएगा। जो बहुत होशियार बिजनेसमैन होता है वो तीन बातें हमेशा चेक करता है, कितनी मेरी अर्निंग है, अर्निंग मैक्सिमम हो, और कितनी मेरी स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग मिनिमम हो, परिणाम स्वरूप सेविंग हमारे पास बहुत होगी। हमें इकोनॉमी के अवतार बनना है, बचत का खाता बढ़ाना है, तो एक तरफ खजाने सफल करते जाना है और दूसरे तरफ इकोनॉमी का अवतार बनकर खजानों का यूज करते रहें, तो ये बचत का खाता हमारे पास बहुत बढ़ता जाएगा। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाएं। तो अमृत वेले जो हम बाबा से शक्तियां लेते हैं सारे दिन भर में, व्यवहार में, कारोबार में, अष्ट शक्तियों के रूप में उनका हमें प्रयोग करना है, जिससे ये खजाना और बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, नमाज शाम के समय भी शक्तियों के सागर बाबा से हम शक्तियां लेते रहें और सारे संसार की आत्माओं को विश्व के ग्लोब पर अनगिनत चमकते हुए आत्माओं रूपी सितारों पर शक्तियों का शावर डालते रहे, फाउंटेन डालते रहे, तो उससे क्या होगा, अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलेगी। और उससे क्या होगा, बाबा से शक्तियां लेने की क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी और जिससे शक्तियों का स्टॉक बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और दसवां खजाना है दुआओं का खजाना। संगम योग है दुआओं को जमा करने की सीजन। इस जन्म में हमें बहुत गोल्डन चांस मिलता है, जितनी चाहे दुआएं हम जमा कर सकते हैं और ये दुआओं का खजाना सारे कल्प में हमारे साथ चलता है। दुआओं के आधार पर ही भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध हमें दूसरे जन्म में मिलता है, इसलिए दुआएं लेना और दुआएं देना इसी बिजनेस में हमें सदा मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। अभी दुआएं देना ये कैसे हो सकता है, जब भी हम किसी को भी मिलते हैं, मिलते समय उनको आत्मा समझते हैं या फरिश्ता समझते हैं तो उनको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उस आत्मा को सुकून मिलता है और परिणाम स्वरूप उसकी दुआ हमें मिलती है। इस तरह से हम आत्माओं से दुआएं ले सकते हैं, और दुआएं देना उसके लिए बाबा ने सेवा का साधन हमें दिया है। इस शरीर के द्वारा हमने द्वापर युग से बहुत पाप कर्म किए हैं, इसलिए इस स्थूल शरीर से यज्ञ की सेवा में बहुत पुण्य कर्म करते जाएं तो धीरे धीरे पापों का खाता कम होता जाएगा और पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। इसलिए तन के द्वारा खूब सेवा करें। कहीं कहते हैं, समझते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, बाबा से बढ़कर और कोई बड़ा नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में छोटे मोटे प्रकार की हर प्रकार की सेवा करके दिखाई है, तो हमें प्रभु प्रसाद सेवा को समझना है और हर प्रकार की सेवा करना है। सेवा किसी भी प्रकार की हो, अगर हम स्नेह युक्त और योग युक्त सेवा करते हैं तो सेवा के सब्जेक्ट में हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए सेवा खूब दिल से करते जाना है। मैं किचन में ऊपर पांडव भवन में टोली बनाने के बाद सारे दिन भर में किचन में पोछा लगाता था 3 बार। लोग मुझे कहते थे, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और पोछा लगा रहा है। मैं सोचता था, पोछा नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने भाग्य को चमका रहा हूं, अपने भाग्य को पॉलिश कर रहा हूं। ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये स्वयं भगवान का घर है। यहां किसी भी प्रकार की सेवा मिलना ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो तन से हमें खूब सेवा करना है और मन से भी खूब सेवा करना है। जो मन से सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हों को क्या मिलती है? बहुत बड़ी गिफ्ट मिलती है। सारे कल्प में मानसिक बीमारी उनके पास नहीं आ सकती है। ये परमात्मा से बहुत बड़ा तोहफा उनको मिलता है। इसलिए संगम युग में हमें मनसा सेवा खूब करना है और अनेक आत्माओं की दुआएं जमा करते रहना है और धन से भी खूब सेवा करना है। कई कहते हैं, मैं बाबा को धन देता हूं। अरे, सारे संसार को देने वाले को हम क्या देंगे? ये तो बाबा ने इंश्योरेंस बैंक निकाली है, खोली है, उसमें हम जितना धन जमा करते हैं वो पदम गुना व्याज सहित हमारे ही अकाउंट में सतयुग में हमें मिलता है। इतना व्याज के साथ तो ऐसी बैंक दुनिया में कोई नहीं है, ये केवल परमात्मा की ही बैंक है। इसलिए हमें धन से भी खूब सेवा करना है। मनसा वाचा कर्मणा तान मान धन संबंध संपर्क से जितना हमें चांस मिलता है, हमें चांस छोड़ना नहीं है। कहते हैं, मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी? मौका था, मेरे हाथ से चला गया, ये है पश्चाताप की मार। इसलिए मौके का हमने पूरा फायदा लेना सीखना है, क्योंकि होशियार विद्यार्थी उसको कहते हैं जो हमेशा होश में रहता है और समय का क्या इशारा है, बाबा का क्या इशारा है और वर्तमान समय मुझे करना क्या है, इस सारा चौकन्ना रहता है, होशियार रहता है और हर मौके का पूरा लाभ लेता है। इसलिए हमें दुआएं खूब जमा करना है। दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, हमारे स्थिति के स्तर को बहुत ऊंचा उठाती हैं, क्योंकि जिनके पास दुआओं का स्टॉक बहुत होता है, बाबा उनको विशेष गिफ्ट देते हैं, बहुत सुंदर और गहन अनुभव रूपी गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट लिफ्ट का काम करती हैं, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाती हैं। इसलिए संगम युग में दुआओं का खाता मुझ आत्मा के पास भरपूर हो, यही तात सदा लगे रहे, इसी पर हम सदा मस्त रहे। और दूसरा खजाना है स्वमान का खजाना। जितने भी सभा में बैठे हैं बहुत रॉयल आत्मा है, होनहार राजे महाराजे इसमें बैठे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं भाई, ताली भी नहीं बजा रहे, कमाल है। राजे महाराजे इसी सभा में बैठे हैं, लेकिन अभी साधारण पोजीशन में हैं, और जब आत्मा परमधाम से नीचे आएगी और सतयुग में सिंहासन मिलेगा, तो सिंहासन पर मिलते ही आपके चेहरे पर वो रूहानी फकूर, वो रॉयल्टी, वो मस्ती अनुभव होनी चाहिए। लेकिन वो संस्कार हमें अभी आत्मा में भरना है। कैसे भरेंगे? समान के सिंहासन पर बैठकर वो संस्कार आत्मा में भर सकते हैं। बाबा ने कहा है मेरी एक आश है, कौन सी? हरेक आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चे के रूप में देखना मैं चाहता हूं। राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है, नियंत्रण करता है। हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं को समान के सिंहासन पर बैठना है, और हमारी जो भी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों पर अनुशासन और नियंत्रण करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना है। स्वयं का राजा जो बनता है वही अन्य का, दूसरों का, जन का राजा सतयुग त्रेतायुग में बनता है। इसलिए समान का खजाना हमें खूब लूटना है, समान का टाइटल रूपी टाई पहनकर सदा रहना है। उससे क्या होगा? जितना समान का खजाना हम यूज करते जाते हैं उतना स्थिति हमारी और ऊंची बनती है, और ईश्वरीय नशा और बढ़ता जाता है और हमारे में रॉयल्टी बढ़ती जाती है। राजा और विश्व महाराजा में क्या अंतर है? नशे का परसेंटेज में अंतर है। जो नशा राजा को होता है उससे बढ़कर विश्व महाराजा को नशा होता है। इसलिए नशे का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना, ये है हमारे ब्राह्मण जीवन में प्रोग्रेस की निशानी। एक साल पहले जो नशा था वो मेरा अभी बढ़ चुका है, माना आपकी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि जमा का खाता बढ़ता जाता है तो नशा भी हमारा ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। याद रखना है एक बात को, ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। इसलिए हम सभी ईश्वरीय संतान की, ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय संतान की ईश्वरीय ड्रेस, ईश्वरीय नशा है, तो आत्मा को वो पहनाकर ही हमने सेवा पर जाना है। इसलिए समान का खजाना हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। तो ये खजाने जितने जितने हमारे बढ़ते जाते हैं उतनी हमें खुशी भरमार होती है, और जैसे खुशी बढ़ती जाती है हमारा चेहरा बोलने लगता है, हमारे पास अथाह खजाने जमा हो चुके हैं। वो आपका चेहरा बोलता जाएगा, क्योंकि बाबा ने कह दिया है आगे आने वाले समय में चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करनी होगी, वाचा और कर्मणा सेवा ठप हो जाएगी, समय में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, चलन और चेहरे से सेवा करनी होगी। इसलिए चेहरे पर हमारे वो खजानों की संपन्नता, वो फकूर, रूहानी फकूर, रूहानी नशे की झलक सदा अनुभव होती रहे। मैं एक बार अबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था रेलवे में एसी कोच में, तो बाजू के कंपार्टमेंट में कुछ लोग नॉन बीके बैठे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई बीके को कैसे पहचाने। तो मैं कान लगा के सुना रहा था कि वो क्या चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीके माना उसके जीवन में दो निशानियां दिखाई देगी। भाई कौन सी? पहली निशानी उसके चेहरे पर खुशी होगी, माना वो 100% बीके है। दूसरी निशानी उनके चेहरे पर पवित्रता की चमक होगी, माना वो बीके है, या अज्ञानी लोग कह रहे हैं। तो ये बाबा की प्रत्यक्षता है, जो बाबा हमें पालना दे रहे हैं उस पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो हमें अपने चलन और चेहरे के द्वारा खूब सेवा करनी पड़ेगी, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है और खजानों से संपन्न होते जाना है, भरपूर होते जाना है। क्योंकि जिनके पास गोडाउन भरपूर होते हैं, कोई बड़ा काल भी आता है, तूफान भी आता है, उन्हों को कोई हलचल में ला नहीं सकता है। क्योंकि वो समझते हैं मेरे गोडाउन अनाज से भरे पड़े हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता है। वो खुद भी यूज करता है और अनेक आत्माओं को वो लोगों को बांटता जाता है। ऐसे हमारे पास जितने खजाने होंगे उतने हमें अनेक आत्माओं को बांटने होंगे। हरेक के पास, बाबा के बच्चे के पास लाइन लगेगी। केवल हमें शांति शक्ति चाहिए, दो घड़ी की शांति शक्ति चाहिए, और आपके पास वो खजाने होंगे तो आपके दृष्टि के द्वारा, दो वरदानी बोल के द्वारा उन आत्माओं को वो शांति शक्ति मिलेगी, खुशी और स्नेह मिलेगा, और वो उनके दिल की दुआएं आपको मिलती जाएगी। ये सेवा हमने बहुत करना है, लेकिन उसके पूर्व तैयारी हमें अभी से ही करना है। इसलिए बाबा बार बार इशारा देते हैं, अभी जमा का खाता बढ़ाते चलो। ध्यान से सुनना, जमा का खाता नहीं होगा तो मन मेरा खाता रहेगा, पश्चाताप करता रहेगा। सागर के बच्चे मास्टर सागर होते हैं, सागर के बच्चे मास्टर सागर कहलाते हैं। तो सागर से, उन खजानों के सागर से मुझ आत्मा ने बहुत कुछ प्राप्त किया है खजाने, ऐसी अनुभूति हमें करना है। तो आपको लगेगा भगवान तो मुझे मिला, लेकिन भगवान से मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ और सदा खुश हूँ। किसी को भी हम पूछते भाई क्या हाल चाल है, भाई हाल तो हमारा खुशहाल है और चाल हमारी फरिश्ते जैसी है, तो यही हमारे मुख से जवाब उसका निकले। तो अभी हमने चंद घड़ियों के लिए बहुत पावरफुल योगाभ्यास करना है, क्योंकि बाबा का इशारा है, बाबा सत्य ज्ञान के सागर बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, लेकिन उसका प्रमाण है बहुत सुंदर गहन अनुभव करना और कराना। तो अनुभव की अथॉरिटी हमें बनते जाना है, इसलिए योगाभ्यास में भी हमें बहुत आगे बढ़ाना है। और हमारी रेस योग में ही है, जो अन्य तीन सब्जेक्ट है, ज्ञान धारणा सेवा, ये तीन सब्जेक्ट सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, पूरक सब्जेक्ट है, लेकिन मेन सब्जेक्ट हमारा योग का है, उसमें हमने नंबर आगे लेना है। तो योगाभ्यास के बहुत सुंदर अनुभव मुझ आत्मा के पास हो, इसके लिए बहुत सुंदर हम योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एक बार तालियां जोरदार बजाइए। देखो बाबा ऊपर से देख रहे हैं, वतन से देख रहे हैं, ये मेरे इतने लाल आए हैं घर में मेरे, इनों को मुझे खजानों से माला माल करना है, तो हम बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जग मग रही हूँ। मज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहु ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का ओरा अनुभव हो रहा है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते थकते ही नहीं है। उस भाग्य विधाता ने मोज भाग्यशाली आत्मा को अथाह खजाने प्रदान किए हैं। उन खजानों की प्राप्ति की झलक ईश्वरीय नशे के रूप में चेहरे पर अनुभव हो रही है। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा मौज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति पुनः दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हो जा रही हो। ओहो दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हो जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओहो मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं देख रही हूं उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम। बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मौज आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति महा ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण करती ही जा रहे हो। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रहे हो। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महा ज्योति शिव पिता के साथ मंगल मिलन का आनंद लूट रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनके संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।